नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिशन तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि देवी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिन हरे कृष्णा 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 हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय त्वं सप्ततन्तुं वितनोषि कौन श्लोक है तो बताए थे त्वमेव कालो अनिमिषां पढ़िए
तमेव कालो निमिषो जनानां आयु लवावा दवयो छिणुषि कूटस्थयात्मा परमेश्य जो महांस त्वं जीवलोकस्य जीवयात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानां आयु लवाद्य यवयोक्षिणोषि कूटस्थयात्मा परमेश्य जो महांस त्वं जीवलोकश्च च जीवयात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानां आयु लवाद्य वयवैक्षिणोषि कूटस्थयात्मा परमेश्यो महांस त्वं जीवलोकस्य च जीवयात्मा तमेव कालो निमिषो जनानां आयु लवाद्य यवयोक्षिणोषि कूटस्थयात्मा परमेश्यो जो महा तम जीवलोकस्य च जीवयात्मा तमेव कालो निमिषो जनानाम आयुर्लवाद्यै अववैक्षिणोषि कूटस्थयात्मा परमेष्ठ जो महान माता जी शब्दार्थ हरे त्वाम तुम एक ही एवा वस्तुतः कालः अनंत समय अनिमिषा बिना पलक झपके जनानाम समस्त जीवों के आयु उम्र अवयादि सेकेंड पल मिनट तथा घंटे इत्यादि अवयवी विभिन्न भागों से छीणों से छीण करते हो घटाते हो कुटस्थ किसी से प्रभावित हुए बिना आत्मा परमात्मा परमेष्ठी परमेश्वर अजह अजन्मा महान त्वं जीवलोकस्य इस भौतिक जगत का च भी जीवः जीवन का कारण आत्मा परमात्मा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों यथा पल क्षण मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। दोहराइएगा, हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों यथा पल क्षण मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप परिवर्तनशील हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता हैं, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में कुटस्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी वे अपरिवर्तनशील केंद्रीय बिंदु हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर विराजमान हैं। जैसा कि उपनिषदों में एकत्वम शब्द से सूचित होता है। यद्यपि जीव लाखों हैं, लेकिन भगवान परमात्मा रूप में उनमें से हर एक में स्थित हैं, फिर भी वे अनेक में एक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उनके अनेक रूप हैं, किंतु वे अद्वैत एक तथा अपरिवर्तनशील हैं। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः नित्य काल में भी स्थित हैं। जीवों को भगवान का भिन्नांश कहा जाता है, क्योंकि वे सभी जीवों के जीवन तथा आत्मा हैं, और उनके हृदयों में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं। जैसी जैसा कि अचिंत भेदाभेद दर्शन की परिपुष्टि है, चूंकि सारे जीव ईश्वर के अंश हैं, अतः वे गुणों में उनके समान होकर भी उनसे भिन्न होते हैं। परमात्मा समस्त जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, वह एक हैं और अव्यय हैं। यद्यपि विषयों में प्रयोजनों तथा कार्यकलापों की अनेक किस्में हैं, फिर भी भगवान एक हैं।
जय श्रील प्रभुपाद। ये हिरण्यकश्यपु की प्रार्थना है भगवान से, ब्रह्मा जी से। वो ब्रह्मा जी को बता रहा है कि आप ही काल हैं। ये सब बात इसलिए कह रहा है कि ब्रह्मा जी हमको मारेंगे नहीं। आप ही काल हैं और सभी जीवों के आयु को आप कम करते रहते हैं, घंटा पक्ष या मिनट सेकेंड आदि, निरंतर आप आयु को काटते रहते हैं। इसमें आशय यह है कि आप कृपा करके हमारी आयु को मत काटिए। श्री भगवान काल हैं, यद्यपि वो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी में वे सभी गुण हैं जो भगवान नारायण में है, कृष्ण में है। चूंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, अतः भगवान की सारी विशेषताएं ब्रह्मा जी में हैं। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि आप ही काल हैं, निमिष जिनका निमिष नहीं है। निमिष का अर्थ होता है विराम, काल निरंतर चल रहा है, काल कभी एक सेकंड के लिए रुक नहीं रहा है, चलता रहेगा। और काल अपनी चाल द्वारा क्या करता है, सर्व जनानाम आयु छिणवती, आयु का छेदन करता है, काटता है। काल बहुत बलवान है, एक एक पल एक एक क्षण एक एक सेकेंड हम लोगों की आयु कम हो रही है। दिन बीतता है, पक्ष बीत जाता है, महीना बीतता है, वर्ष बीतता है, ये सब बीतना क्या है, ये आयु का कम होना है। भगवान ने इस जगत की सृष्टि किया है, सृष्टि के साथ नियम बना दिया है, टाइमर घटता जाएगा। जैसे हम लोग घड़ी में कभी कभी टाइमर सेट करते हैं, ऐसे ही प्रत्येक जीव की आयु निश्चित है, और वह आयु छट-छट कटता जाता है, सेकेंड सेकेंड, मिनट मिनट, घंटा घंटा, महीना महीना वर्ष इत्यादि के अंगों से ये कटता जाता है। इसको काल चक्र कहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी विचार में हो, कहीं भी हो, लेकिन उसकी आयु कटती रहती है। किसी में शक्ति नहीं है कि वो इस चक्र को रोक दे। यह तभी रुक सकता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। जब तक इस जगत में हैं, तब तक शरीर बदलेगा और सभी शरीर में आयु फिट होती है। चींटी की आयु जैसे निश्चित है, वैसे मनुष्य की आयु, पशुओं की आयु, वृक्ष की आयु। हम लोग देखते हैं कि वृक्ष खड़ा रहता है लेकिन अपने आप वृद्ध होकर के गिर जाता है। उसमें आए हुए फलों की आयु है। जना नाम जन कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है वह जन। तो जना नाम जिन लोगों ने इस भौतिक जगत में जन्म लिया है, उनकी आयु का छेदन काल भगवान करते हैं। और कटी हुई आयु के एक क्षण को भी हम सैकड़ों या लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके लौटा नहीं सकते। जो जीवन का समय बीत गया उसको लौटाया नहीं जा सकता। कभी कोई ये प्रयास करे कि हमारी बचपन की अवस्था आ जाए, वो आएगी नहीं। हमारी युवावस्था आ जाए कभी नहीं। एक क्षण भी आयुषा क्षण में को भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दे करके भी हम जीवन के बीते हुई क्षण को, एक क्षण को भी लौटा नहीं सकते। एक बार की यह सत्य घटना है। रशिया में एक वैज्ञानिक हुआ, उसने डॉक्टरों से प्रार्थना किया, हमको कृपा करके 4 दिन जिला दीजिए। तो बीमार था, मृत्यु सज्जा पर था। वो कहा कि हमको 4 दिन जीवित कर दीजिए, जिला दीजिए और अधिक। हम कुछ आविष्कार करना चाहते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आयु 4 मिनट की है, हम इसे बढ़ा नहीं पाएंगे, कोई उपाय नहीं। वो व्यक्ति मर गया। सत्य घटना है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो समय मिला है, अवधि मिली है, जिसको उम्र कहते हैं, उसमें से कुछ भी घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। ये घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे। दोनों के नाम में हिरण्य शब्द है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, अक्ष का अर्थ होता है आंख, जिसकी आंख सदा सोना पर रहे, कहां से धन कमाएंगे, धन कमाएंगे ना? उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और कशिपु कार्ड होता है वेद, सोना पर सोना, सोने वाला हिरण, हिरण्याक्ष कमाता था और हिरण कशिपु भोगता था उसको। सदा धन की, धन के खोज में रहता था हिरण्याक्ष, और इसी खोज के सिलसिले में वो पूरी पृथ्वी को चुरा लिया। जब मनु महाराज ने आज्ञा दिया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया मनु महाराज को कि सृष्टि करो बेटा, तब मनु महाराज कहीं पृथ्वी का पता नहीं पाए, तो उन्होंने निवेदन किया भगवान से, ब्रह्मा जी से, कि हे पिताजी कहाँ सृष्टि करूं, पृथ्वी का तो पता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का, उनके जुगल चरणों का ध्यान किया। तब श्री ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर श्री भगवान उनकी नासिका से प्रकट हुए, उनको छींक आई और छींक के साथ एक चने के बराबर सुअर का बच्चा बराह निकल आया। और ब्रह्मा जी के देखते देखते वो फिर पर्वत के समान हो गया, गरजने लगा। उसकी गर्जना सुन करके ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार करने लगे, कौन है एक हमारे नासिका से प्रकट हुए। तो देखते देखते भगवान बहुत बहुत बड़ा हो गए, बड़ा है भगवान, और देवता लोग स्तुति करते हैं, जन लोग के निवासी स्तुति कर रहे थे, उनकी स्तुति सुनते हुए वे समुद्र में कूद पड़े। एक कारण हो पूरे ब्रह्मांड में समुद्र फैला था। तो भगवान कूद गए सत्यलोक से समुद्र में। अब समुद्र में कूद करके वे पृथ्वी को अपने दांत पर उठा करके आ रहे थे। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके गाड़ दिया था, क्योंकि पृथ्वी में ही सब धन है ना, सारा सोना या डायमंड सब कुछ पृथ्वी में है। तो उसने सोचा कि धन इकट्ठा क्या करना है, जहां सारा धन है उसी को बक्से को ही उठा ले। तो पृथ्वी को ही चुरा लिया था, तो चुरा करके समुद्र में रसातल में रख दिया। भगवान वराह देव पृथ्वी को अपने दांत पर रख कर आ रहे थे। हिरण्याक्ष खोज में था, तो ब्रह्म वरुण लोक में पहुंच गया, वरुण जी के पास। वो कहने लगा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। वरुण जी ने कह दिया, मैं तो इस समय शांति का मार्ग अपना लिया, अब मैं युद्ध नहीं करता हूं। आपको युद्ध करना है तो परम पुरुष श्री विष्णु से युद्ध कीजिए, वे आपकी सखी पूरा कर देंगे। तो पूछे कहां है वो, कहां रहता है? तो उन्होंने कह दिया, अभी अभी बाराह रूप धारण करके वे रसातल में गए हैं। तो क्या करना चाहता है, कहां है, लोकेशन ठीक से बताइए। तो वरुण जी ने कह दिया उनका असली पता नारद जी को रहता है, आप नारद मुनि से भेंट करो। तब वो सत्यलोक फिर चला, ब्रह्मा जी के पास नारद जी रहते हैं ब्रह्मलोक में। तो पहुंचा, नारद जी से भेंट हुई, उसने कहा आप विष्णु के पता को जानते हैं, वो कहाँ रहा है हमें बताइए। तो नारद जी ने कहा बड़ा अच्छा किए कि आप आ गए, वो अभी आपके धन को अपहरण करके ला रहे हैं। विष्णु बहुत मायावी है, सावधान रहिएगा, वो आपकी धरती को आपके धन को लेकर के आ रहा है। अरे वहां पहुंच गया, अब हाँ वहां पहुंच गया, लेकर के आ रहा है। नारद जी ने कह दिया आपके धन को, उसको भ्रम में डालने के लिए, आपके धन को लेकर के आ रहा है और बहुत मायावी है, छली है। नारद जी का एक गुण है, वे भगवान की निंदा किए और असुर के बल की प्रशंसा किए, आप बहुत बलवान हैं और आपके संचित धन को वो लेकर के आ रहा है। तो पहुंचा प्रलयकालीन समुद्र में, और देखा कि विष्णु वाराह रूप से तैरते हुए आ रहे हैं और उनके दांत पर पृथ्वी है। तो दूर से ही कहा पहले छोड़ो पृथ्वी को और नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। बहुत हंसा, पहले ठठा करके हंसने लगा, ये पानी में कब से रहने लगा, जंगल में रहने वाला जानवर ये पानी में कैसे आ गया। भगवान पर बहुत आक्षेप किया, अरे तुम्हारी प्रशंसा बड़े बड़े वीर करते हैं, वरुण जी किए, तुम इस तरह से चोरी क्यों कर रहे हो, छोड़ पृथ्वी, पृथ्वी को पहले छोड़। लेकिन भगवान देखे कि पृथ्वी डर रही है गिर न जाए, तो वो पृथ्वी को दांत पर लिए लिए पहले आ रहे थे, उसकी गाली सहते हुए, हृदयाक्ष के आक्षेप को सहते हुए आ रहे, और आ करके समुद्र के ऊपर पृथ्वी को स्थापित करके तब उन्होंने कहा कि अब मैं भाग करके जा कहां सकता हूं, आप जैसे बलवान से बैर करके मैं कहां जाऊंगा। तो फिर युद्ध होने लगा हिरण्याक्ष में और श्री भगवान में। उस युद्ध को ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ देख रहे थे। हिरण्याक्ष बहुत माया युद्ध किया, माया उत्पन्न किया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी माया को नष्ट कर दिया, सुदर्शन चिन्मय प्रकाश देकर के सारी माया को नष्ट कर दिया। तब वो भगवान के सामने आ गया, उसकी माया नष्ट हो गई, गदा युद्ध करने लगा। जो गदा भीषण आवाज कर रहे थे, हिरण्याक्ष की गदा से भगवान की गदा एक बार गिर गई तो देवता लोग विषाद में पड़ गए कि अब क्या होगा। तो श्री भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और संकेत किए कि चिंता मत कीजिए, देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अभिजित मुहूर्त, अभी इसको मारिए, नहीं तो फिर ये कठिन हो जाएगा इसका मारना। ब्रह्मा जी के बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी की ओर देखे, ब्रह्मा जी की ओर देख करके उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, और अपने बाएं थप्पड़ से मारा उन्होंने हिरण्याक्ष, वो कटे हुए वृक्ष की तरह गिर गया। हाथ में गदा थी, उसके बाल बिखरे थे और वो गिरा, मुख से खून उगलने लगा, एक थप्पड़ से ही इतना बड़ा वीर धराशायी हो गया, छटपटाने लगा। तो श्री भगवान उसके ऊपर चढ़ गए और अपने हाथों से उसे मारने लगे। उस समय वो भगवान को देखते हुए देह त्याग किया, जो सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे, अहो धन्य है मृत्यु, इस तरह से भाग्य किसका होगा, भगवान का स्पर्श मिला है और दर्शन मिला है, इस समय वो भगवान के हाथ से मारा जा रहा है। भगवान के हाथ से मरना एक बहुत बड़ा सौभाग्य, सभी देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। और यह प्रसंग चल ही रहा है, हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, सबसे पहले सभा किया, सभा में अपने भतीजों को आश्वासन दिया और अपनी अनुज वधु को, अपनी माता को, दीति को, सबको समझा बुझा करके शांत किया, अनेक इतिहास कह करके। असुर भी बड़े ज्ञानी होते हैं, प्रवचन करने में ऐसा प्रवचन करते हैं कि शोक दूर हो जाए, माता दीति का शोक दूर हो गया। उसके बाद उसने निश्चय किया कि अब हमको विष्णु का वध करना है। विष्णु के वध के लिए एक अलग मीटिंग किया असुरों की, और उस मीटिंग में प्रतिज्ञा किया कि मैं विष्णु का वध करूंगा, और सबसे भयानक शत्रु विष्णु को ही हिट लिस्ट में रखा। और विष्णु को मारने के लिए सबसे पहले उसने सोचा इंद्र उसके अधीन रहता है, उसके अनुसार शासन करता है, पहले इंद्र को जीत लिया, स्वर्ग पर अधिकार किया, उतने से भी संतोष नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि अब अमर होने के लिए, अजर होने के लिए तपस्या करनी चाहिए। वो मंदराचल पर जाकर के बहुत भारी तप करने लगा, पानी पीना भी छोड़ दिया, और अंगूठे के बल खड़ा हो गया। वह अभी एक दो वर्ष नहीं, एक दो हजार नहीं, दस हजार वर्ष, देवताओं के दस हजार वर्ष, देवताओं का एक दिन मनुष्यों के वर्ष के बराबर होता है। इस तरह से दस हजार वर्ष दिव्य, दस हजार वर्ष वह खड़े होकर के तपस्या करना लगा, और खड़ा वो भी दोनों पैर पर नहीं, दोनों पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया। अंगूठे पर हम लोग तो दस मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते। दस हजार वर्ष तपस्या करता रहा और कभी स्नान नहीं किया, बाथरूम में नहीं गया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, खड़ा, और खड़ा रहते रहते उसके शरीर पर दीमक लग गए, चींटियां लग गई, और उसके शरीर के सब खून मांस को खा गई, मिट्टी का टीला जम गया, चारों तरफ घास उग गई। इतना तप किया, ऐसा तप पहले किसी ने नहीं किया था। उसके मस्तक से एक अग्नि की ज्वाला निकली, देवता लोग उससे जलने लगे, तो उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी इच्छा को पूरा कीजिए, नहीं तो हम लोग जल जाएंगे, इसकी तपस्या के तेज से हमारे लोकों में आग लगी है। देवताओं की बात मान करके श्री ब्रह्मा जी आए मंदराचल पर्वत पर वहां उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने ध्यान से देखा, एक जगह से बहुत तेज निकल रहा, तो समझ गए कि यहीं पर हिरण्यकश्यपु है। तब वे उस पर जल का छिड़काव किए, उसकी वो बांबी से प्रकट हुआ और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, बड़ाई करने लगा, आप ऐसे हैं ऐसे हैं, जो भगवान के गुण हैं उन्हीं गुणों को वो ब्रह्मा जी में देख रहा था। तो कहता है आप ही काल हैं, आप सभी जीवों के उम्र को कम करते रहते हैं, आप कुटस्थ हैं, आप अपने धाम श्री वैकुंठ में रहते हुए, मैं तो ब्रह्मा जी के लिए कह रहा है, मैं तो विष्णु के लिए कह रहा हूं, कुटस्थ श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं और में कोई परिवर्तन नहीं होता है कुछ काल के लिए, ऐसे तो उनकी भी मृत्यु होती है, लेकिन असुर है कह रहा है कि आप अनादि हैं, आपका शुरुआत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं आप अनादि हैं, आपका कोई प्रारंभ नहीं, अनंत पार, और अनंत पार का अर्थ है आपका कोई किसी देश में और न किसी काल में निधन है। भगवान श्री कृष्ण सभी देशों में है और सभी काल में, यह विचार करना कि कृष्ण हुए थे अब नहीं है, यह तमोगुणी विचार है। वे सदा से हैं, अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक मतलब सब जगह, सबके हृदय में, सभी स्थानों पर, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में, वैकुंठ में, गोलोक में, सब जगह। सभी स्थान पर और सभी काल में भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु की स्तुति ऐसी है जिसको पढ़ करके भ्रम हो जाता है। ये भगवान का वर्णन है कि देवता का, ब्रह्मा जी का? श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर दिए हैं, जो गुण श्री भगवान का है वो सारे गुण ब्रह्मा जी में हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि हैं। तब मैं इसको ठीक से समझा प्रभुपाद जी की टीका पढ़ करके। पहले मुझे भ्रम था कि ये कैसी स्तुति है, ब्रह्मा को साक्षात भगवान कह रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये असुर का विचार है, भक्त लोग सभी देवताओं को मानते हैं, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को मानते हैं, लेकिन परम ईश्वर ये नहीं है। परम ईश्वर तो श्री भगवान है, श्री कृष्ण, और असुर किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, और ईश्वर मान करके उनकी आराधना करते हैं, परंतु असुरों का जो आसुरी विचार है वो जाता नहीं है। रावण बहुत बड़ा पुजारी था भगवान शिव का, और शिव जी से वर मांगा, हमको 10 मस्तक दीजिए, एक दिमाग से काम नहीं, 10 दिमाग से काम करूंगा, और कोई एक सिर काट दे तभी नौ बचा रहेगा, और हमको 20 भुजा दीजिए, इसे 20 गुना काम करें। भगवान श्री राम लंका के युद्ध में उसके 10 मस्तक को और 20 भुजा को काट दिए, फिर भी वे सभी भुजाएं और मस्तक नए उगाते थे, नया जन्म ले लेते थे। भगवान श्री राम काटते काटते परेशान हो गए, तब वे विभीषण जी की ओर देखे, बहुत परेशान थे भगवान, उन्होंने विभीषण जी की ओर देखा, तो विभीषण जी ने कहा, संकेत किया, हे नाथ, इसके नाभि में अमृत कुंड है, इसी से इसका सिर उग रहा है और भुजाएं आ रही। तब भगवान 31 बाण चढ़ाए, एक अग्नि बाण छोड़े नाभि पर, वो अमृत कुंड को सोख लिया, तब रावण मर गया, गिर गया। असुरों का विचार होता है कि हम सदा जीवित रहें, भक्त भी चाहते हैं कि हम जीवित रहें, अधिक दिन तक जीवित रहें, यदि ज्यादा दिन जिएंगे तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी, भगवान के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। इसके लिए वो भी जीवन चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए, ऐसे अमर होना नहीं चाहते कि हम अब मरे ही नहीं, भक्त की इच्छा नहीं हो, भक्त जीना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, भक्ति करने के लिए, भोग के लिए नहीं। रावण ब्रह्मा जी से और शिव जी से, दोनों से वर प्राप्त किया। रावण वर मांग रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, तो रावण वर मांगा, हम किसी के मारने से नहीं मरे। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया, मरना तो सबको है। तो रावण ने कहा ठीक है, अपनी बुद्धि से विचार किया, हम बानर और मनुष्य छोड़कर किसी से न मरे। वो जानता था कि बानर बहुत कमजोर होते हैं और मनुष्य ये अगर हमको मारने आएंगे तो मैं इनको खा जाऊंगा। तो वर मांग दिया कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके मुझे कोई न मारे, हम काहू के मर ही न मारे, बानर मनुष्य जात द्विवारे, दो को छोड़ करके हम किसी से न मरे। उसको क्या पता था कि असली काल भगवान मनुष्य बनकर आ जाए। भगवान मनुष्य बन करके आ गए अपनी योग शक्ति से रावण का वध कर। हिरण्यकश्यपु इस तरह से अजर अमर होना चाहता केवल भोग के लिए। हम सारे संसार को अपने बस में कर लें, सभी हमारे अधीन रहें, मैं किसी के अधीन न रहूं, यही वरदान था। मैं रात में न मरूं, दिन में न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, समुद्र में न मरूं। और ब्रह्मा जी ने वर दे भी दिया, ब्रह्मा जी भगवान के प्रिय हैं, वो जानते थे कि हम जो कुछ कहेंगे भगवान उसको पूरा करेंगे। एक भक्त ने पूछा था कि ब्रह्मा जी बिना भगवान के सैंक्शन के कैसे कह दिए। ब्रह्मा जी कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। तो भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। उस समय न दिन था न रात थी, आधा सूर्य अस्त था, तो दिन नहीं था और न रात थी, आधा सूर्य उगा हुआ था। और अपनी गोद में लेकर के जांघ पर हिरण्यकश्यपु को मारे, उसका आधा शरीर धरती पर था और आधा शरीर गोद में था भगवान के, ऊपर था न नीचे था। श्री भगवान कोई भी उपाय कर सकते हैं किसी को मारने के लिए अथवा जिलाने के लिए, किसी भी उपाय से मार सकते हैं, जिला सकते हैं, उनकी अचिंत शक्ति है। ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं। ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता के रचयिता हैं, वे भगवान के गुणों का विशेषता का वर्णन किए हैं। बहुत तो बिना सैंक्शन के वे कोई काम नहीं कर सकते, उनका स्वरूप है, वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान जैसे हैं। इस श्लोक में भगवान को काल के रूप में वर्णन किया गया है। और निमिष जिनकी पलक कभी झपकी नहीं लेती, निरंतर सावधान, सब समय वे सब कुछ देखते रहते हैं। ये सोते हैं कर्णदक साई के रूप में, लेकिन उनकी अचूक दृष्टि है, सब कुछ देखते रहते हैं। और यहां भी सोते हैं मंदिर में, लेकिन सब कुछ देखते हैं, उनकी लीला है सोने की। और निमिष है, निमेश रहित, पलक रहित। काल जन्म भी देता है, लेकिन काल की सबसे बड़ी विशेषता कार्य है कि वो विनाश करता है। तो सभी मनुष्यों की या जीवों की आयु का छेदन करते हैं काल भगवान। बड़े बड़े राजा हुए, ये सब काल के द्वारा निरस्त कर दिए गए। बड़े बड़े साम्राज्य उदित हुए, ये ध्वस्त हो गए। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी रहेगा नहीं, यह अनित्य संसार है। न पद रहेगा, न ज्ञान रहेगा, और न तो यह समृद्धि रहेगी। अतः हमें अपने जीवन को सदा भगवान की भक्ति में लगाए रखना चाहिए। और किसी को कोई पता नहीं है कि जीवन का दिन कितना दिन बाकी है। श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि जितना भी जीवन हो उसमें भी दिन प्रतिदिन कट रहा है। दिन पर दिन, पल प्रतिपल, क्षण क्षण आयु बीत रही। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी की भी आयु बीतती है। दो परार्ध, उनकी आयु का काल निश्चित है, दो परार्ध, एक परार्ध बीत चुका है, दूसरा परार्ध अभी चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। गीता में भगवान ने कहा है, सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र एक हजार युग, चतुर्युग, चारों युग जब बीतता है तब तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है। चारों युग कितने वर्ष का होता है? 43,20,000 वर्ष चारों युग। तो 43,20,000 से 1,000 का गुणा करें, इतनी लंबी आयु है भगवान ब्रह्मा की एक दिन। और इस तरह से वे 360 दिन जीवित रहते हैं। जब गणना किया गया है कि ब्रह्मा जी का दिन है, जीवन काल है 1,54,40,000,000,000 वर्ष, उनको भी भय लगता है कि मेरा जीवन काल, मेरी अवधि समाप्त हो जाएगी। जो ब्रह्मा जी सबको पद देते हैं, इंद्र का पद और देवताओं के अलग अलग पोस्ट देते हैं, वो भी एक दिन अपने पद से हटते हैं, भगवान में समा जाते हैं, शिरोदक्षाई में। तो जब ब्रह्मा जी भी अपना स्थान छोड़ते हैं, तब हम लोगों को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसमें कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी आयु का काल बीत रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है, अतः प्रत्येक सेकंड भगवान के भजन में बीते, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन और भगवान की पूजा, भगवान की सेवा में लगे रहे। यदि भगवान की सेवा में हमारा मन लगा है, हमारा हाथ लगा है, तो कोई बात नहीं, इस शरीर से जो करना है वो हम कर लिए, इस शरीर का इस्तेमाल ठीक से हो गया, यही सफलता है। फिर शरीर रहे या जाए कोई चिंता नहीं, शरीर तो मिलेगा, प्रत्येक जीव को मिलता है, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में भी हम भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। पर यह शरीर क्षण विनाशी है, क्षण भंगुर है, किसी क्षण जा सकता है, अतः सावधान होकर के अपने मन को कृष्ण के चरण में लगाना चाहिए। सबसे बुद्धिमत्ता है कि भगवान का नाम हमारे जीभ पर हमेशा आता रहे, हमारे कान में आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत अवश्यम परिणामी पेशलम। एक बहुत बड़े राजा जो भक्त थे केरल के, उन्होंने लिखा है एक श्लोक में कि अरे मूढ़ मते मूर्ख, यह शरीर सैकड़ों जगह संधि है, इस संधि जुड़ा हुआ है, एक दिन सारी संध्या खुल जाएंगी, यह गिरेगा, पतति अवश्यम परिणाम पेशलम, इसमें जो जवानी है, सुंदरता है, वो निश्चित जाने वाली है। किमौ सधय क्लेशसिद मूढ़ दुर्मते, दवाई पी करके और अधिक क्लेश क्यों दे रहे हो शरीर को। निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, सबसे अच्छा है निरामय, जिसमें कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कृष्ण रसायनम पियो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी है वो जीव तत्व है और देवता जो है वो भी जीव तत्व है, तो ब्रह्मा जी का एज ज्यादा बताया जाता है और जबकि देवताओं का एज बहुत कम बताया जाता है, ऐसा क्यों?
देवता में बहुत ग्रेड है ना, श्री ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने ही उनकी आयु निश्चित किया और दूसरे देवताओं की भी आयु निश्चित की है, तो अपने अपने कर्म के अनुसार सब शरीर मिलता है। यदि एक इंद्र गोप पीठ होता है, इंद्र गोप मतलब इंद्र का हाथ ही, बरसात के दिन में आपने देखा होगा एक कीड़ा लाल लाल होता है, उसको इंद्र गोप कहते हैं। चाहे इंद्र गोप हो चाहे ब्रह्मा हो, सब अपने कर्म के अनुसार शरीर पाते हैं और उस शरीर में भिन्न भिन्न आयु रहती है, भगवान निश्चित किया है। मनुष्य हम लोग हैं लेकिन मनुष्यों में भी आयु तो सबकी अलग अलग है, कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, 90 वर्ष जीता है, और कोई तो गर्भ में ही मारा जाता है। सब अपने कर्म का फल है। मच्छर कुछ ही दिन में, चाहे दो चार दिन में या दो चार घंटे में मर जाते हैं। यह सब कर्म के अनुसार है, भगवान निश्चित करते हैं। तो देव योनि भी कर्म का फल है। स्वर्ग में भी बहुत ग्रेड है, बहुत स्तर है। स्वर्ग में चले भी जाए तो कोई बहुत कम दिन जीते हैं, कोई बहुत कम दिन रहते हैं पद पर, और पद से तुरंत हटा दिए हैं।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज हम लोग बार बार इस चीज को सुन रहे हैं और शास्त्रों में पढ़ भी रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और बार बार इस चीज को श्रवण करने के बावजूद भी हमारे में वो चेतना आ नहीं रहा है कई सालों से, तो ये कैसे है कि हम इस चीज को पार कर पाए?
उपाय क्या है? उपाय तो यही है कि सुने खूब, कब शरीर से आत्मबुद्धि निकलेगी। अब कोई दिन निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसी समय ज्ञान हो जाएगा, परंतु ज्ञान प्राप्ति का ये उपाय है सुनना पढ़ना बारंबार। जब तक ये जीवन है तब तक पढ़ते जाइए सुनते जाइए। पहले शिथिल होगी ये धारणा, हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, ऐसा सुनेंगे और उसके अनुसार भगवान की सेवा में लगेंगे, तब यह देह की धारणा जाएगी। लेकिन जो उपाय है यही है, सुनना पढ़ना और तदनुसार करना। भगवान के सेवक हैं तो भगवान की सेवा में लगे, पुत्र परिवार आदि से विरक्ति होना चाहिए, सांसारिक काम धंधा से बातचीत से विरक्ति आनी चाहिए। धीरे धीरे आएगा। क्या उम्र हो गई आपकी कि आप इतना चिंता में?
उम्र तो 40 है लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं ये 60 साल तक जिएंगे, इसीलिए चिंता है।
तो चिंता मत कीजिए, अपना जो काम है उसे कीजिए। अपना काम है भगवान का नाम जपना, भगवान की कथा सुनना और भगवान की आरती में भाग लेना, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना और वैष्णवों की सेवा करना, ये हमारा काम है। हमारा जो काम है अपना काम करना चाहिए, और वो ज्ञान देना भक्ति देना ये तो भगवान का काम है। वो करेंगे, लेकिन जब देखते हैं कि भक्त लगा हुआ है भक्ति में, मेरी सेवा में, तो अपने आप हृदय में हम ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश आएगा अपने हृदय में, आएगा इसी साधन से। भगवान के विषय में बार बार सुनिए, बोलिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। हताश नहीं होना चाहिए, ये साधन बताए गए हैं, उसका निश्चित फल है। ये ज्ञान भगवान के द्वारा आता है। ददामि बुद्धि योगम तम जेन माम उपयान देते, भगवान स्वयं कहे हैं मैं बुद्धि योग देता हूं, जिस बुद्धि योग से भक्त मेरे पास आ जाता है उसकी देहात्म बुद्धि छूट जाती है। तो भगवान के वचन असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन इतना अधिक अंधकार है, अनादि काल से अज्ञान है, उसके दूर होने में देर लगेगी, पर निश्चित है फल आएगा, निराश नहीं होना चाहिए। यदि फल में देर हो रही है तो कोई बात नहीं, और कीजिए साधन, फल आएगा। हमारे यहां कहते हैं पांचे आम पच्चीसे महुआ, तीस बरस पर अमली के फलना, पांच बरस पर आम फलता है, पच्चीस बरस पर महुआ फलता है, और तीस बरस पर अमली फलती है। यदि कोई आज वृक्ष लगा रहा है तो वो सोचे कि आज ही इसमें फल आ जाए, कैसे आएगा, तब काट करके फेंक दे, नहीं, उसको सींचे, रक्षा करे, पांच बरस के बाद फल आएगा। महुआ लगाया है तो 25 वर्ष में फल आएगा, और इमली लगाया है तो 30 वर्ष में आएगा। तो ऐसे हम लोग तो अभी चालू कर रहे हैं, कितना वर्ष से जप कर रहे हैं, जप करते रहे, जीवन हो सकता है लग जाए, लेकिन फल निश्चित है, फल अवश्य आएगा। अभी एक जीवन की क्या बात है, भक्त तो मनोरथ करते हैं कि हमको करोड़ों बार शरीर लेना पड़े, कोई बात नहीं, आपकी प्राप्ति हो जाए। ये भक्त का निर्णय है, साहस रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और सब कामों का फल यदि विफल भी हो जाए, न मिले, लेकिन भगवत भजन का फल तो अवश्य मिलता है। हो सकता है कि आप बहुत पढ़ाई किए, पढ़ाई नौकरी के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि नौकरी न मिले, या कोई काम करना चाहते हो न हो पाए, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति अमोघ है, ये बात कश्यप जी अपनी पत्नी को बताए हैं, माता देवहूति अदिति से। सारा स्वर्ग चला गया था असुरों के हाथ में, तो उसने रोते हुए अपने पति से कहा कि हमारे पुत्र अनाथ हो गए, सब उनका राज चला गया, आप कोई उपाय बताइए हमारे पुत्रों को राज मिले। तो कश्यप जी कहते हैं हमने एक व्रत सीखा है ब्रह्मा जी से, 12 दिन का व्रत है, उसे करोगी तो भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा करें। माता अदिति ने केवल 12 दिन तक व्रत किया जिसको पयोव्रत कहते हैं, और भगवान पुत्र बने माता अदिति के। पुत्र बन करके बड़ी के पास गए और सारा संसार मांग लिए बिना झगड़ा के, आसानी से उनके पुत्र इंद्र आदि राजा फिर बने, स्वर के राजा। उसी प्रसंग में कश्यप कहते हैं, अमोघा भगवत भक्ति नेत्रेति मतिर ममा। भगवान की भक्ति अमोघ है, ऐसा नहीं है कि कभी विफल हो जाए, फल निश्चित मिलेगा। और देह में से आत्मबुद्धि हट जाए तो बहुत साधारण फल है। देह की ममता हट जाए, आसक्ति हट जाए, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। असली फल है भगवान में प्रेम होना, तो प्रेम मिलेगा तो साधन करते जाना चाहिए। प्रेम मिलेगा भगवान की कृपा से, और उनकी कृपा मिलती है साधन से, भक्ति से। नाम जप करते जाइए, भगवान का दर्शन करते जाइए, भगवान को प्रणाम करते जाइए, इसका फल है। लेकिन भगवान कब फल प्रकट करेंगे उनके हाथ में है, हमारे अधिकार में जो है वो हम करें। हमारा अधिकार यही है ना, हम भगवान का नाम जप सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, और भगवान का प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार में। लेकिन अपने अधिकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम दर्शन कर सकते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज दर्शन नहीं करेंगे, किसी दूसरे काम में चले जाएंगे। हमारा जो काम है, अपनी ड्यूटी है, वो करना है, और यह ड्यूटी प्रभुपाद जी के द्वारा बनाई गई। उस समय कोई बहाना नहीं करना चाहिए, हम यहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, क्यों गए? जब ड्यूटी है उस समय प्रभुपाद जी की आज्ञा है, दर्शन करना है तो दर्शन करना ही चाहिए। जब जब करना है तो जब करना ही चाहिए, जब पढ़ने का आदेश है तो पढ़ना चाहिए। इन सब साधनों को उत्साह के साथ, आशा के साथ करते जाना चाहिए। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
जय श्री प्रभु।